الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. तो इस क्लास में हम आजकल मारिफुल कुरान का मुकदमा पढ़ रहे हैं, जो कि उसकी जिल्द नंबर 1 में हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी उस्मानी दामत बरकातहू के बेटे हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातहू का लिखा हुआ है। और इसमें हम शुरू के चंद उनवानात पढ़ चुके थे, वही की ज़रूरत, जो कि अकली दलाइल के ज़रिए से भी हज़रत ने समझाई थी कि वही की क्या ज़रूरत है, फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नुज़ूले वही के तरीके, ये हमने पिछली क्लास में पढ़े थे कि तीन किस्में होती हैं। एक को वही कल्बी करार दिया उलमाए कराम ने, कि नबी के कल्ब के ऊपर बराह रास्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वही नाजल फरमाते हैं। ख्वाब भी तकरीबन इसी वाली किस्म के अंदर आ जाता है। और दूसरी किस्म जो थी वो कलाम इलाही थी, कि अल्लाह ताला नबी से बाकायदा कलाम फरमाते हैं। और कलाम जो होता है ये दो तरफा होता है, दो तरफा बातचीत को कलाम कहते हैं, सिर्फ एक तरफा बातचीत को, बात को कलाम नहीं कहते, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम के साथ जो है एक दफा ये ख्वाब में हुआ, और एक दफा जो है वो मेराज के मौके पर हुआ, और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो है ना ये कोहे तूर के ऊपर अक्सर औकात हुआ, यानी कई दफा हुआ। और फिर जो है वो तीसरी कस्म जो थी वो वही है मलकी, यानी जिसमें कोई मलक फरिश्ता इन्वॉल्व होता है दरमियान में, और उसकी फिर मुख्तलिफ शक्लें हमने पढ़ी थी। इसमें एक बड़ी यानी है तो ये इल्मी कस्म की डिस्कशन, फैक्ट्स वगैरह आपको बताए जा रहे हैं, नॉलेज यानी माजी के बारे में, बेसिकली ये इल्म पर मबनी है ये वाले लेक्चर्स। लेकिन इसमें एक इस्लाही बात भी पिछले हफ्ते हुई थी कि ये जो वही का सिलसिला जब फरिश्ते के साथ होता था, जब फरिश्ता जो है वो इंसानी शक्ल में आता था, तो वो जो वही होती थी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरे ऊपर सबसे ज्यादा हल्की होती थी, अहवनु अलैया, ठीक है, सबसे ज्यादा नरम और सबसे हल्की होती थी। और इसकी वजह क्या बयान फरमाई उलमाए कराम ने, क्योंकि इंसान और इंसान ये दोनों एक ही जिन्स से ताल्लुक रखते हैं, तो जब इंसानी शक्ल में आते थे तो सबसे ज्यादा मुनासिबत होती थी नबी अलैहिस्सलाम को उनके साथ, और इस तरह से जो है ना ये काम आसान हो जाता था। और जब अल्लाह ताला की तरफ से बराह रास्त जो है जब जर्स की आवाज में वही नाजिल हो रही होती थी, जैसे कला यानी अल्लाह ताला जो है ना वो अल्लाह ताला की बात जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के वजूद के अंदर दाखिल हो रही होती थी, या इवन फरिश्ता अपनी असल शक्ल के अंदर आया हुआ है और नबी अलैहिस्सलाम को नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उसके पर के फड़फड़ाने की आवाज़, ये भी जर्स की एक एक्सप्लेनेशन है, घंटी की आवाज़ की एक एक्सप्लेनेशन ये भी है कि फरिश्ते के पर के फड़फड़ाने की वो आवाज़ होती थी। तो बहरहाल इन दोनों सूरतों में एक ना एक गैर जिन्स, ना जिन्स का लफ्ज तो बुरे मानी में अल्फाज इसमें इस्तेमाल होता है ना, तो गैर जिन्स से जो है वो मैसेज आ रहा होता था, तो वो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर सबसे ज्यादा मुश्किल होता था, ठीक है। ऐसी वजह से अल्लाह ताला ने हम इंसानों के ऊपर, हम आम इंसानों के ऊपर भी मेहरबानी फरमाई कि अपना जो कलाम है, अपनी तरफ से जो हिदायत है, वो हम तक बराह रास्त नहीं पहुंचाई, राइट right? और ना जो है वो किसी फरिश्ते के जरिए से पहुंचाई, बल्कि इंसानों के जरिए से पहुंचाई, ठीक है। तो इंसानों का इंसानों तक जो है वो पैगाम पहुंचाना, ये इंसानों के लिए सबसे आसान और सादा रास्ता है, सबसे सहल रास्ता है, ठीक है। इसी तरह से इंसान की इंसान के जरिए से ही अगर इस्लाह हो जाए तो ये उसके लिए सबसे आसान होता है। जब भी अल्लाह ताला ने नबियों को भी इंसानी शक्ल में दुनिया में मामूर किया, अपनी अपने इल्म से, अपने इल्म के साथ, अपनी हिदायत के पैगाम के साथ इंसानों को ही मामूर किया, और फिर आगे भी इंसानों ही का सिलसिला चला। ठीक है, अगरचे के काफिर जो है वो ये डिमांड करते रहे, ये बातें बोलते रहे कि ये क्या बात हो गई, कि ये तो हमारे जैसा एक इंसान है, इसको तो एक फरिश्ता होना चाहिए था, और ये क्यों हमारी तरीके से खाना खाता है और हमारी तरीके से जो है वो बाजारों में चलता है। भाई काफिर इस तरह के एतराजात करते रहे, लेकिन उनको इस बात की समझ नहीं थी कि भाई ये रास्ता सबसे आसान रास्ता है। अगर अल्लाह ताला फरिश्तों को भेज देते ना, तो फिर ये मुसीबत पड़ जाती। ठीक है, नबी के पास तो इतनी ताकत अल्लाह ताला ने दी हुई होती है कि वो सह गए फरिश्ते की बात को सुनना और या अल्लाह रब्बुल इज्जत की डायरेक्ट बात को सुनना, ये तो वो सह गए ना, हम तो सह नहीं सकते थे इसको बिल्कुल, तो हम तो सारे के सारे बर्बाद ही हो जाते, तबाह हो जाते। बहरहाल, तो फिर उसके बाद हमने तारीख नुजूल कुरान पढ़ना भी शुरू कर दिया था पिछली क्लास के अंदर। तो उसमें फरमाया था कि कुरान करीम दरअसल कलाम इलाही है, इसलिए अजल से लोहे महफूज में मौजूद है, अल्लाह ताला का कलाम है, तो लोहे महफूज के अंदर मौजूद है, कुरान करीम का इरशाद है, बल हुआ कुरान मजीद फी लोहे महफूज। फिर उसके बाद लोहे महफूज से इसका नुजूल दो मरतबा हुआ है, एक मरतबा पूरे का पूरा आसमान दुनिया के बैत इज्जत में नाजिल कर दिया गया, बैत इज्जत जिसे अल बैतुल मामूर भी कहते हैं, काबतुल्ला के महाजात में आसमान पर फरिश्तों की इबादत गाह है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, ये हदीस मुबारक से मेराज वाली जो अहदीस है उनसे पता चलता है कि ये बैतुल मामूर जो है ये सातवें आसमान पर है, सातवें आसमान पर है। तो आसमान दुनिया के अंदर इससे पता चलता है कि ये सातों आसमान जो है ना, ये सातों आसमान दुनिया में शामिल है, पहला आसमान भी, दूसरा आसमान भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, छठा भी, और सातवां भी। ठीक है, सातवें के ऊपर जो है वो अल बैतुल मामूर है, वहां नबी अलैहि सलाम की मुलाकात हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम से हुई। ठीक है, तो आसमान दुनिया, अब ये आसमान दुनिया का मतलब क्या है ये हमें नहीं पता। ठीक है, कि इसका मतलब कोई फिजिकल एंटिटी है, यानी मेड ऑफ हाइड्रोजन नाइट्रोजन और मेड ऑफ जो है वो कॉपर और आयरन या गोल्ड या किस चीज से बनी हुई है, यानी ये फिजिकल मिनरल से बनी हुई है, गैसेस से बनी हुई है, ये हमें नहीं मालूम। क्या ये जो स्टार्स एंड प्लैनेट्स हमें नजर आते हैं क्या यही आसमान दुनिया है, या आसमान दुनिया जो है वो किसी और शक्ल में है जो कि हम अपनी आंखों से और अपने जो है वो कानों से परसीव नहीं कर सकते हैं, ये हमें नहीं पता। ठीक है ना, तो एहतमाली दर्जे में तो मुख्तलिफ किस्म की बातें की जा सकती हैं पॉसिबिलिटीज की लेवल पर, लेकिन फॉर श्योर फॉर सर्टन जो है वो हमें ये चीजें नहीं पता है, क्योंकि ये चीजें जो है वो हमारी निगाहों से ओझल भी हो सकती हैं। फरिश्ते रहते हैं वहां पर आसमान दुनिया के इन सातों दर्जों के अंदर, फरिश्ते रहते हैं और फरिश्ते नूरी मखलूक हैं, ये हमें नजर नहीं आते हैं। ठीक है, मजीद हमें हदीस मुबारक से ये, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ये काबतुल्ला के महाजात में है, तो ये भी हमें पता चलता है कि बैतुल मामूर जहां पर है ना, अगर वहां से कोई चीज ड्रॉप की जाए तो वो बिल्कुल सीधी गिरते गिरते गिरते, यानी बाकायदा जिसको ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं, तो सम सोर्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पुल के जरिए से वो गिरते 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 जो है वो काबतुल्ला की छत पे आके गिरेगी, काबतुल्ला की छत पे। तो क्या मतलब हुआ इसका कि काबतुल्ला जो है वो बैतुल मामूर के सीध में है, बिल्कुल सीध में, या दोनों एक दूसरे की सीध में। ठीक है, तो अब इससे हमें एक और भी बात एहतमाली दर्जे में पता चलती है, फॉर श्योर तो हम किसी भी चीज के बारे में भी नहीं हो सकते, लेकिन एहतमाली दर्जे में पता चलती है कि अर्थ जो है ना, हमारी जो प्लैनेट अर्थ है ये रोटेट करती है और ये रिवॉल्व करती है, ये एक जगह पे साकित नहीं है। इसका हम ये नहीं कह सकते कि ये जो है वो, यानी ये यानी साइंसी डिस्कवरीज के जरिए से, कैलकुलेशंस के जरिए से, और जो है अब तो जो स्पेसक्राफ्ट जो है वो यहाँ से बाहर निकले हैं तो उनके जरिए से बाकायदा व्यू करके भी ये चीजें क्लियर है कि अर्थ जो है वो कांस्टेंट नहीं है, एक जगह के ऊपर स्टिल नहीं है, बल्कि वो रोटेट और रिवॉल्व कर रही है अपने एक्सिस के ऊपर भी और अपने ऑर्बिट के ऊपर भी। ठीक है, तो अब ये जो बैतुल मामूर है, अगर ये वाकई इसी तरह की कोई चीज है, फिजिकल मैटर से बना हुआ कोई ये आसमानी दुनिया है, फिर उसके ऊपर जो है वो बैतुल मामूर है, तो वो भी साथ साथ रिवॉल्व कर रहा है, वो भी साथ साथ रिवॉल्व कर रहा है, और जहां जहां जो है वो काबतुल्ला रिवॉल्व और रोटेशन के अंदर जहां जहां काबतुल्ला होता है, बैतुल मामूर वहां वहां उसकी सीध में रहता है। तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी की पूरी जो ये जो कायनात है ना, ये सारी की सारी जमीन के गिर्द रोटेट कर रही है, ठीक है, जमीन के गिर्द रोटेट कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है ना वो दो मसले आ जाते हैं कि भाई ये साइंस के खिलाफ है, ठीक है, ये साइंस के खिलाफ है, क्योंकि साइंस कहती है कि जमीन रोटेट कर रही है सूरज के गिर्द, ठीक है, और मौलवी लोग कहते हैं, हैं मौलवी लोग कह रहे हैं कि जी नहीं, जमीन तो रोटेट नहीं कर रही, बाकी चीजें रोटेट कर रही हैं। तो भाई हम वो वाले मौलवी तो नहीं है, हम तो ये नहीं कह रहे कि जमीन रोटेट नहीं कर रही, जमीन रिवॉल्व नहीं कर रही, और सूरज और चांद जो है वो, सॉरी, चांद तो खैर कर ही रहा है, वो तो साइंसदान भी कहते हैं, लेकिन सूरज जो है वो जमीन के गिर्द घिर रहा है, हम ये तो नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं कि पूरी कायनात जमीन के गिर्द घूम रही है, राइट। और पूरी कायनात की जब बात आती है तो साइंसदानों को भी कख पता नहीं इसके बारे में कि कायनात है क्या चीज, कहाँ तक पहुंची हुई है, और क्या उसके अंदर किस किस्म की जो है वो डायनामिक्स उसके अंदर हो रही है, इनको भी कुछ नहीं पता। सारी की सारी कैलकुलेशंस हैं मैथमेटिकल इक्वेशंस के अंदर डाल डाल करके, फिगर्स जो है ना वो डाल डाल करके रिजल्ट्स निकालते रहते हैं, ठीक है। तो हम तो भाई अपने वैसे भी जो वही है, वही ये मतलू और वही ये गैर मतलू जिसका जिक्र अभी आगे आ रहा है, हम तो इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। और एक बात और भी, ठीक है ना, एक तो ये हदीस हो गई ना जिससे कि पता चलता है कि शायद पूरी कायनात जमीन के गिर्द घूम रही है, ठीक है, सूरज वूरज की बात नहीं कर रही है, तो छोटी मोटी सी चीजें हैं, सूरज तो बहुत छोटी सी एक चीज है, हम तो पूरे के पूरे यानी गैलेक्सीज की बात कर रहे हैं, राइट, और पता नहीं स्टेलर सिस्टम्स और ना जाने क्या क्या सब नाम उन्होंने दिए हुए, हम तो सबकी बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी दलील आशिकाना, राइट, आशिकाना दलील इसकी अगर आप दे दें, ये तो हो गई ना थोड़ी सी अकलाना आकेलाना दलील हो गई, ठीक है, एक जो है वो आकेलाना प्लस आशिकाना, ठीक है, तो ये दलील अगर हम आपसे मांगे कि आप बताएं, आकेलाना प्लस आशिकाना, तो वो क्या हो सकती है, जी जी बिल्कुल माशाल्लाह, ठीक है, क्योंकि अल्लाह के महबूब एक ही हैं, अल्लाह के महबूब, बल्कि अल्लाह का घर भी जो है ना वो एक ही है, बैतुल मामूर तो एक दूसरा घर है ना, मतलब वो तो एक फरिश्तों के तवाफ का घर है, बैतुल्लाह भी एक ही है और महबूबे खुदा भी एक ही है। और ये महबूबे खुदा किधर हैं, वो इसी छोटी सी निक्की सी टाइनी सी, राइट, अर्थ के अंदर हैं, यहीं पर हैं, ठीक है ना। तो अब जो है ना वो सारा निजाम इसके गिर्द, राइट, क्योंकि सारा निजाम जो है वो महबूब खुदा की गिरदी तो होगा और खुदा ने करवाया सारा सारा निजाम, सही है, तो इसमें कोई इश्काल की बात नहीं है ना, तो ये साइंस से टकराता है और ना हमें कोई शौक है साइंस से टकराने की, मतलब जहां टकराएंगे, जहां टकराएंगे, जहां पे वो खुदा की नफी करती है साइंस, वहां हम टकराएंगे उससे, ऐसी की तैसी तुम्हारी, नहीं तुम नहीं मानते हमारे खुदा को, हम तो मानते हैं खुदा को, ठीक है ना, बाकी दूसरी चीजों से हमें कोई जरूरत ही नहीं है, मसला हमें कोई नहीं, ये उसको कहते ना वो हमारे यहाँ पंगा लेने की जरूरत ही कोई नहीं हमें, ठीक है, वेरी गुड, बहरहाल। तो फरमाया कि ये नुजूल लैलतुल कद्र में हुआ था, फिर दूसरी मरतबा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थोड़ा थोड़ा करके हसबे जरूरत नाजिल किया जाता रहा, यहाँ तक कि 23 साल में इसकी तकमील हुई। नुज़ूल कुरान की ये दो सूरतें खुद कुरान करीम के अंदाज़े बयान से भी वाज़े हैं। इसके अलावा नसई, बैहकी और हाकिम रहिमहुल्लाह अजमईन वगैरह ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु से मुतअद्दिद रवायात नकल की हैं, जिनका खुलासा यही है कि कुरान करीम का पहला नुज़ूल यक बारगी आसमान दुनिया पर हुआ और दूसरा नुज़ूल बतदरीज आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ, ठीक है। तो ये जो पहला नुज़ूल था ना, ये यकबारगी यानी एकदम से हुआ, तो इसके लिए कुरान मजीद के अंदर जो अल्लाह ताला ने फरमाया ना, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, तो नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु सॉरी नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु तंज़ीलन जो है ये होता है तदरीजन, ठीक है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता किसी चीज के नुज़ूल को जो है वो नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु तंज़ील के लफ्ज़ से अरबी में जाना जाता है, और जो इंजाल होता है ना, अनजला युनजलु इंजालन, ये होता है एकदम से, ठीक है, इंस्टेंटेनियसली और दफतन, ठीक है। तो कुरान मजीद में, कुरान मजीद ने अपने लिए, अपने इंजाल के, अपने नुजूल के लिए ये दोनों अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। इसके ऊपर एक मजे का वाकया पहले भी हम सुना चुके हैं आप लोगों को, वो मुझे असल में मिल नहीं रहा, लेकिन वाकया तकरीबन ऐसे ही था कि एक दफा जो है वो किसी जगह कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और उसके अंदर जो है ना वो मुसलमान भी थे और नॉन मुस्लिम भी थे, यहूद भी थे वगैरह। तो उसमें जो है वो एक यहूदी जो उनका स्कॉलर था, उसने किसी मुसलमान आलिम से कहा कि देखो तुम्हारे कुरान मजीद में है ना कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, तो भाई जिक्र जो है ये तो नसीहत नामे के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो तुम्हारा कुरान खुद कह रहा है ना कि हमने नसीहत नामे को नाजिल किया और हम उसकी हिफाजत करते हैं, तो नसीहत नामे तो सारे के सारे हैं, तौरात भी एक नसीहत नामा है, तुम खुद ही कहते हो कि तौरात भी एक नसीहत नामा है, इंजील भी एक नसीहत नामा है, कुरान भी एक नसीहत नामा है। तो देखो तुम्हारी अपनी इस कुरान की आयत से ये बात साबित हो रही है कि सारे के सारे महफूज हैं, सारे के सारे नसीहत नामे महफूज हैं, जिन जिन को तुम नसीहत नामा कहते हो, ठीक है ना। ये तरीका होता है इस्तदलाल करने का कि जो चीज हमारे और तुम्हारे दरमियान कॉमन है, हम उसी चीज को दलील के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो उस यहूदी ने भी यही तरीका इस्तेमाल करने की कोशिश करी, लेकिन नाकाम कोशिश, ठीक है। कहता है कि इस आयत से साबित होता है कि तौरात भी महफूज है, तुम खामखाई कहते फिरते हो कि तौरात जो है ना वो अल्लाह ताला ने वो यहूदियों ने चेंज कर दी और इंजील जो है वो ईसाइयों ने चेंज कर दी। देखो तुम्हारा खुद कुरान कह रहा है कि तौरात भी महफूज है। तो उन आलिम साहब ने जवाब दिया कि इसके अंदर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना वो है नज़लना ज़िक्रा, नज़ला युनज़िलु, उसी का जो है वो मुतकल्लिम का सीगा बनता है नज़लना, ठीक है। तो ये तंजील का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इस वाली आयत के अंदर, और तंजील जो है ना बतदरीज तदरीजन आहिस्ता आहिस्ता करके नाजिल होना, इस बात पे मैं और आप दोनों मुत्तफिक हैं कि ये सिर्फ कुरान मजीद के साथ है, बाकी जो किताबें हैं वो एक यकबारगी नाजिल हुई हैं, जैसे टैबलेट्स की शक्ल में नाजिल हुई है, एकदम सारी की सारी नाजिल हुई हैं। तंजील तो सिर्फ कुरान मजीद के लिए, ठीक है। तो जब इन्होंने ये दलील दी ना, तो वो यहूदी आगे से कहने लगा, क्या तुम दो देवबंदी हो, क्या तुम देवबंदी हो, क्योंकि इतनी अच्छी नजर अरबी जुबान के ऊपर और हदीस और कुरान के ऊपर ये सिर्फ उलमाए देवबंद को ही अल्लाह ताला ने अता फरमाई है, और ये यहूदियों को भी ये बात पता है। और पता होना खाली नहीं, वो ऐसे नहीं पता है, उनके ऊपर कोई वही नाजिल नहीं हुई, उन्होंने रिसर्च करी हुई इन सब बातों के ऊपर कि मुसलमानों के अंदर कहाँ कहाँ जो है ना वो दीनी उलूम सही शक्ल में महफूज हैं और कहाँ कहाँ जो है ना वो उनको भुला दिया गया है, ये उन्होंने रिसर्च करी हुई है, सारा का सारा होमवर्क करके बैठे हुए हैं, उनको ये सारी बातें पता है हमारे बारे में, जो हमें भी खुद नहीं पता अपने पास में। बहरहाल, तो कुरान करीम को पहली मरतबा आसमान दुनिया पर नाजिल करने की हिकमत इमाम अबू शामा रहमतुल्लाह ने ये बयान की है कि इससे कुरान करीम की रिफ़त शान को जाहिर करना मकसूद था, और मलाइका को ये बात बतानी थी कि ये अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जो अहले जमीन की हिदायत के लिए उतारी जाने वाली है, ठीक है। अल्लाह ताला और मलाइका के दरमियान जो है ना ये बातचीत, कॉन्वर्सेशन जो है वो चलती रहती है, ठीक है। तो अल्लाह ताला मलाइका को कुछ दिखाना चाहते हैं, मलाइका अल्लाह ताला से सवाल करते हैं, ये कुरान मजीद से भी हमें पता चलता है कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का इरादा किया, तो मलाइका से ने अल्लाह ताला से ये कहा कि नहनु नुसब्बिहु बिका व नुकद्दिसु लक, आप हम आपकी तस्बीह करते हैं और आपकी तहमीद भी करते हैं, आप जो है वो क्यों बना रहे हैं, कौन मखलूक शहवाद के साथ और जज्बात के साथ वो फिर जो है वही खून खराबा करेगी जो जिन्नात पहले करते रहते थे, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने फिर उनको ये जवाब दिया, ठीक है। तो ये कॉन्वर्सेशन जो है वो चलती रहती हैं, आज भी चलती रहती हैं। शेख जरकानी रहमतुल्लाह ने नुक्ता भी बयान किया है कि इस तरह दो मरतबा उतारने से ये भी जतलाना मकसूद था कि ये किताब हर शक व शुबह से बालातर है, और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलबे मुबारक के अलावा ये दो जगह और भी महफूज है, एक लोहे महफूज में और दूसरे बैत इज्जत में, ठीक है, यानी बैतुल मामूर में बाकायदा कुरान मजीद महफूज है। तो अल्लाह ताला कोई काम करते भी हैं और उसको जताते भी हैं, ठीक है, जताते भी बताते भी, ठीक है, तो जरूरी नहीं है वैसे हर चीज बताएं, बहुत सारी चीजें अल्लाह ताला ने नहीं भी बताई है, यानी अल्लाह ताला का इल्म तो हर चीज पर मुहित है। अल्लाह ताला अगर सारी चीजें हमें बता दें तो यानी फिर हम तो उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर सके ना, हम तो उसको एब्जॉर्ब ही ना कर सके, हमारी तो कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं है। तो अल्लाह ताला ने हमें कुछ चीजें जो है वो बताई हैं कि ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, और बे इंतहा चीजें ऐसी हैं जो कि बताई भी नहीं। तो लोहे महफूज में, बैत इज्जत में, इन दोनों यानी कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने महफूज करके रखा हुआ है। इस पर तकरीबन इत्तेफाक है कि कुरान करीम का दूसरा तदरीजी नुजूल जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे मुबारक पर हुआ, उसका आगाज उस वक्त हुआ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल थी। इस नुजूल की इब्तिदा भी सही कौल के मुताबिक लैलतुल कद्र में हुई है, और यही वो तारीख थी जिसमें चंद साल बाद गजवाए बदर पेश आया। लेकिन ये रात रमजान की कौन सी तारीख में थी, इस बारे में कोई यकीनी बात नहीं कही जा सकती है। बाज रिवायात से रमजान की 17वीं, बाज से 19वीं और बाज से 27वीं शब मालूम होती है। ठीक है, गजवाए बदर के बारे में जो मशहूर तारीख है वो 17वीं, 17 रमजान मुबारक है ना, लेकिन इस नज़ूल कुरान के बारे में ये बातें यकीन से नहीं की जा सकती कि ये क्या है। बैतुल इज्जत जी, मारफुल कुरान के मुकदमे में तो यही लिखा हुआ है कि बैतुल इज्जत बैतुल मामूर का दूसरा नाम। ठीक है, 25 सफ़े, सफ़ा नंबर 25 के ऊपर पढ़ रहे हैं। जन्नात के अलावा दुनिया में डायनासोर्स को एंजल देखते थे फाइट करते हुए। हाँ, डायनासोर्स के बारे में वैसे जो ये इन्होंने फॉसिल्स के जरिए से जो अपनी कहानियां बनाई हैं, तो अगर वो सही हैं, हमें नहीं पता कि वो सही हैं कि नहीं है, लेकिन अगर वो सही हैं तो हाँ, ये जो टी रेक्स होता था, टायरानोसॉरस और दूसरे जो इस किस्म के खूंखार, या आपस में लड़ते रहते थे, खूंखारी करते रहते थे, ठीक है, तो ये भी मुमकिन है कि डायनासोर्स को भी देखते थे और जो है वो जिन्नों को भी देखते थे। लेकिन हमारे अकाबरीन ने, जैसे कि सुबहान अल्लाह, अभी जो कससुल अम्बिया वाली सीरीज शुरू हुई है हमारी सैटरडे की क्लासेस के अंदर, तो उसके अंदर माशाल्लाह अलबिदाया व निहाया से हमारे दोस्त नुमान भाई ने जो पढ़ना शुरू किया है, माशाल्लाह उसके अंदर ये बातें लिखी हैं। ठीक है, कि यानी इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने ना, कि जन्नात जो है वो खून खराबा किया करते थे। ठीक है, अब ये और बात है कि डायनासोर्स जो थे वो उनको बतौर सवारी के इस्तेमाल करते थे, या डायनासोर्स जो आपस में लड़ते थे वो भी जिन्नात की ही हरकतों की वजह से, जैसे हम मुर्गे नहीं लड़ाते, ठीक है ना, मुर्गे लड़ाने का भी आपने सुना है। ठीक है, तो अब मुर्गा तो खुद तो नहीं लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन माशाल्लाह खान साहब ने जो है वो मुर्गों को भी लड़ना सिखा दिया, और ऐसा लड़ते हैं कि वो दूसरे को मार के छोड़ते हैं। ठीक है, तो क्या पता जिन्नात ने जो है वो माशाल्लाह, राइट, वो भी उन्होंने जो है वो डायनासोर्स को लड़ना सिखा दिया हो। ठीक है, एनीवे, तो सबसे पहले नाजुल होने वाली आयत, सही कौल ये है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम की सबसे पहली जो आयतें उतनी वो सूरह अलक की इब्तदाई आयात हैं। सही बुखारी में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा इसका वाक़ा ये बयान फरमाती हैं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नुज़ूल वही की इब्तिदा तो सच्चे ख्वाबों से हुई थी। ठीक है, रुया सादिका, सच्चे ख्वाबों से, तो यानी वो 6 महीना जो है ना, वो आप के ऊपर ऐसे ख्वाब आते रहे कि रात को ख्वाब देखते थे और सुबह को बिल्कुल वो रोज रोशन की तरह जो है ना, वो उसकी ताबीर सामने आ जाती थी, यानी वही मामला हो जाता था जो रात को ख्वाब में देखा होता था। तो ये रुया सादिका 6 महीने तक जारी रहे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खलवत में इबादत करने का शौक पैदा हुआ, यानी दिल में अल्लाह ताला ने ये शौक पैदा कर दिया कि यानी तन्हाई पसंदी जिसको कहते हैं ना, तो और इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में कई कई रातें गुजारते थे और इबादत में मशगूल रहते थे। इबादत में उस जमाने में नमाज तो थी ही नहीं, नबी अलैहिस्सलाम को इबादत का तरीका सिखाने वाला भी कोई नहीं था, तो उलमा कहते हैं कि बस फिक्र में रहते थे। ठीक है ना, यानी अल्लाह ताला का जिक्र बहैसियत फिक्र, सोच में, अल्लाह ताला के बारे में सोचना, अल्लाह की मखलूक के बारे में सोचना, और इस तरह की, इसी को इबादत कहा गया। ठीक है, तो नक्शबंदी सिलसिले के जो मशायख हैं फिर कहते हैं कि ये मुराकबा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराकबे में रहते थे। क्योंकि मुराकबा भी दरअसल फिक्र का ही, तो इबादत में मशगूल रहते थे। यहां तक कि एक दिन इसी गार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ता आया और उसने सबसे पहली बात यह कही कि इकरा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इब्राहिमी पर अमल नहीं करते थे। तो दीन इब्राहिमी था क्या? ठीक है, दीन इब्राहिमी कोई इस तरह से जो है ना वो इबादत वगैरह, अच्छा नबी अलैहिस्सलाम के पास इल्म तो नहीं था ना, ठीक है ना, ये जो हज वगैरह के जो चीजें होती थी तो वो बहुत ज्यादा जो है वो खराब हो चुका था ना वो मामला। तो ये वो आपको पता है ना कि सीरत क्लास में क्या पढ़ा था कि अरफात जाते ही नहीं थे क्योंकि अरफात जो है वो हरम से बाहर होता था, ठीक है ना। तो इन्होंने बहुत सारी चीजें जो है तब्दील कर दी थी। तो ऐसे हज जैसा जो एक यूनिवर्सल किस्म की एक इबादत थी वो भी खराब हो चुकी थी, और नबी अलैहिस्सलाम के पास कोई ये चैनल नहीं था सही नॉलेज का कि भाई ये सही तरीका है हज करने का, ये सही तरीका है जो है वो नमाज पढ़ने का, और ये ठीक है आप तो उम्मी भी थे, ठीक है, और किसी उस्ताद से, किसी इंसानी उस्ताद से तो जाके आप ने कुछ सीखा ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से ये दीनी इब्राहिमी पर अमल जो है ना वो सिर्फ इस हद तक हमें पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलाम कभी भी बुतों के सामने सजदा रेज नहीं हुए, कभी भी बुतों को वो कहते हैं ना मोहब्बत के साथ या जो है वो अकीदत के साथ हाथ लगाया करते थे वो लोग, नबी अलैहिस्सलाम ने, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम के उम्मतियों ने भी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु दोनों का नाम आता है कि इन्होंने भी कभी जो है ना वो बुत परस्ती नहीं करी। तो दीन इब्राहिमी पर अमल जो है ना वो फिर इसी शक्ल में हुआ करता था। और मशाइख ने जो गार हिरा की इबादत, तो हमारे हजरत नहीं बल्कि बताया हमें कि ये मुराकबे की शक्ल की कोई इबादत किया करते थे, फिक्र किया करते थे, ठीक है। अच्छा, और इसने सबसे पहली बात ये कही कि इकरा यानी पढ़ो, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इसके बाद खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाकया बयान किया कि मेरे इस जवाब पर फरिश्ते ने मुझे पकड़ा और मुझे इस जोर से भींचा कि मुझ पर मुशक्कत की इंतहा हो गई, यानी फरमाते हैं कि जैसे लग रहा था कि मेरी पसलियां जो है ना रिब के जो है वो इधर की पसलियां इधर, उधर की पसलियां इधर, इतना ज्यादा जो है वो मुझे दबोचा, जैसे वो सांस उखड़ने लगती है इंसान की, तो मुशक्कत की इंतहा हो गई। फिर उसने मुझे छोड़ दिया और फिर कहा इकरा, मैंने जवाब दिया कि मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूं। फरिश्ते ने मुझे फिर पकड़ा और दोबारा इस जोर से भींचा कि मुझ पर मुशक्कत की इंतहा हो गई। फिर उसने मुझे छोड़कर कहा इकरा, मैंने जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। उस पर उसने मुझे तीसरी मरतबा पकड़ा और भींच कर फिर छोड़ दिया, फिर कहा इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक खलक अल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम, से लेके 5 आयात के आखिर तक, इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमा अल इंसान मा लम यालम, पड़ोस परवरदिगार के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को मुंजमद खून से पैदा किया, पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार सबसे ज्यादा करीम है इलल आखिर। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली पहली आयात थी। इसके बाद 3 साल तक वही का सिलसिला बंद रहा। इसी जमाने को फतरते वही, फतरत यानी फितरत नहीं, वो जो तौ से होता है ना फितरत, तो उसमें फा के नीचे जेर होता है और तौ होता है, तो ये ता के साथ दो दो नुक्ते वाली ता, फतरते वही का जमाना कहते हैं। फिर 3 साल के बाद वही फरिश्ता जो गारे हिरा में आया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान और जमीन के दरमियान दिखाई दिया और उसने सूरह मुद्दस्सिर की आयात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई। उसके बाद वही का सिलसिला जारी हो गया। इसमें थोड़ा सा तफसील है कि सूरह मुद्दस्सिर की आयात नाजिल हुई या सूरह मुजम्मिल की आयात नाजिल हुई, या अय्युहल मुजम्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, या जो है या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंजिर व रब्बिका फकब्बिर व सयाबका फतहिर वगैरह। तो ये जो फरिश्ते का भेजना है, अब मशायख जो है वो अपनी एक यानी उनकी एक दूसरी नजर होती है चीजों के ऊपर, जो कि एक्चुअली दूसरी पहली नजर से कोई मुख्तलिफ नहीं होती, वो बस वो एक रूहानी बातें होती हैं उसके अंदर ज्यादा। तो फरमाया कि ये जो 3 दफा भेजने के अंदर क्या हिकमत थी, ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम को 3 ही मरतबा क्यों भेजा और उसके बाद जो है वो अल्लाह का कलाम क्या सुना दिया नबी अलैहिस्सलाम को। तो उसकी वजह ये थी कि नबी अलैहिस्सलाम की जो निस्बत थी ना अल्लाह ताला के साथ, रूहानी निस्बत जो थी रूहानी मखलूक के साथ और खालक के साथ, तो वो निस्बत जो है वो पहले से एक एक दर्जे में कायम थी। तो निस्बत के चार दर्जे हमारे मशायख एक्सप्लेन करते हैं, तो उनमें से जो पहला दर्जा था वो नबी अलैहिस्सलाम को पहले ही हासिल था। वो कैसे हासिल हुआ, उसको निस्बत इनकासी कहते हैं, कि जिसमें इंसान का दिल जो है ना वो इतना साफ शफाफ हो जाता है कि जब वो किसी वजूद के सामने आता है तो वो उसको रिफ्लेक्ट करना शुरू होता है। ठीक है, जैसे मिरर होता है ना, मिरर अगर साफ सुथरा हो तो फिर वो रिफ्लेक्शन बड़ी अच्छी करता है, और अगर गंदा मिरर हो तो फिर रिफ्लेक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ना। देखें, ये लाइट का कॉन्सेप्ट जो है वो इवन साइंस के अंदर भी है और रूहानियत के अंदर भी जो है वो नूर का कॉन्सेप्ट है। तो रिफ्लेक्शन जो है ना वो नूर की रिफ्लेक्शन, यहाँ पे ये नहीं कि गंद की रिफ्लेक्शन, ठीक है, बल्कि नूर की रिफ्लेक्शन। तो आप कल्बे मुबारक का आईना था, ये बिल्कुल साफ शफाफ पहले से था। वो पहले से कैसे था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शक्कुस सदर जो है वो आप का पहले से करवाया, ठीक है ना, बचपन में भी हुआ हुआ था और फिर जो है वो बाद में भी हो चुका था। ठीक है, तो निस्बत इनकासी पहले से हासिल थी। अब जब ये पहली दफा आकर के भेजा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, तो इससे जो है ना जिब्राइल अलैहिस्सलाम के कल्बे मुबारक से नबी अलैहिस्सलाम के कल्बे मुबारक के अंदर निस्बत इल्काई ट्रांसफर हो गई। निस्बत इल्काई ये इनकासी से ज्यादा मजबूत निस्बत होती है। ठीक है, फिर उसके बाद इल्काई तो मिल गई, निस्बत इल्काई यानी गोया कि एक चीज डाल दी नबी अलैहिस्सलाम के अंदर। पहले सिर्फ उसको साफ सुथरा करके आईने की मानिंद बनाया था, अब जो है ना वो इल्का फरमा दी एक लेवल ऑफ निस्बत नबी अलैहिस्सलाम के अंदर। लेकिन ये भी इतनी सफिशिएंट नहीं थी कि नबी अलैहिस्सलाम वही का बार उठा सके, बोझ उठा सके। फिर पकड़ा और भेजा, और फिर उसके बाद जो छोड़ा है, तो इस दूसरी दफा के भेजने के अंदर नबी अलैहिस्सलाम को निस्बत इस्लाही नसीब हुई। निस्बत इस्लाही जो है वो तीसरे दर्जे की निस्बत होती है, थर्ड लेवल ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है ना, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग निस्बत होती है। इससे जो है ना वो इंसान के अंदर इतना मलका और ताकत पैदा हो जाती है कि इसका ताल्लुक फिर बहुत मजबूत हो जाता है, और ये दूसरों की इस्लाह का भी काम कर सकता है। ठीक है, इसको निस्बत इस्लाही कहते हैं। लेकिन ये भी जो है ना वही का बोझ उठाने के लिए सफिशेंट नहीं थी। तीसरी मर्तबा पकड़ करके जब भेजा है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, तो उसके बाद जो है ना वो निस्बत इत्तेहादी नसीब। निस्बत इत्तेहादी का मतलब क्या होता है कि जो नकल होती है वो असल जैसी बन जाती है, ठीक है ना, यानी जिसके साथ निस्बत है बिल्कुल वैसा ही बन जाता है मामला। और जो माशाल्लाह बच्चे बड़े लोग जो है वो हजरत सिद्दीक अकबर हजरत आन की सीरत वाली क्लासेस सुन रहे हैं, उनको निस्बत इत्तेहादी उम्मीद है कि अब तो रट गई होगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को नबी अलैहिस्सलाम के साथ निस्बत इत्तेहादी नसीब थी ना, नबी अलैहिस्सलाम को किससे निस्बत इत्तेहादी नसीब हुई, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ। तो मलकूती सिफात फिर नबी अलैहिस्सलाम के अंदर आ गई। ठीक है ना, तो जिस तरह जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का कलाम लेकर के अर्श से फर्श तक आते थे, तो अब नबी अलैहिस्सलाम जो है वो उनसे इस कलाम को अपने अंदर मुंतकिल करने के और इसको जो है वो संभालने के और इसका बोझ उठाने के काबिल हो गए। ठीक है, तो ये फिर मशाइख की बातें हैं, माशाल्लाह उनको जज़ाए खैर दें हमारी तरफ से। बहरहाल, तो ये तो हो गया तारीख नुज़ूल कुरान में से पहली नाज़िल होने वाली आयत के बारे में। फिर उसके बाद फरमाते हैं कि मक्की और मदनी आयात का क्या क्या तफसील है। फरमाया कि आपने कुरान करीम की सूरतों के उनवान में देखा होगा कि किसी सूरत के साथ मक्की और किसी के साथ मदनी लिखा होता है। इसका सही मफहूम समझ लेना जरूरी है। मुफस्सरीन की इस्तेलाह में मक्की आयत का मतलब वो आयत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगर्ज़ हिजरत मदीना तय्यबा पहुंचने से पहले पहले नाजिल हुई। ठीक है ना, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम मदीना तैयबा अपनी वालिदा मोहतरमा के साथ पहले भी जा चुके थे, लेकिन वो हिजरत की नीयत से जाना नहीं था, हिजरत की नीयत से तो जब हिजरत हुई तब तब गए ना। तो उससे पहले पहले जो कुछ नाजिल हुआ वो मक्की आयात कहलाती है, या मक्की सूरतें कहलाती है। और मदनी आयत का मफहूम यह है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना पहुंचने के बाद नाजिल हुई। बाज लोग मक्की का मतलब ये समझते हैं कि ये शहर मक्का में नाजिल हुई, और मदनी का ये कि वो शहर मदीना मुनव्वरा में उतरी, लेकिन ये मतलब दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि कई आयतें ऐसी हैं जो शहर मक्का में नाजिल नहीं हुई लेकिन चूंकि हिजरत से पहले नाजिल हो चुकी थी इसलिए उन्हें मक्की कहा जाता है। चुनाचे जो आयात मिना, अरफात या सफरे मेराज के दौरान नाजिल हुई वो भी मक्की कहलाती है। यहां तक कि जो आयतें सफरे हिजरत के दौरान मदीना मुनव्वरा के रास्ते में नाजिल हुई उनको भी मक्की आयात कहा जाता है, इसलिए कि हिजरत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हुई थी, रास्ते में थे ना, मुकम्मल नहीं हुई थी हिजरत, तो वो भी मक्की आयात कहलाती है। यहां तक कि जो आयतें, अच्छा ये हो गया। इसी तरह बहुत सी आयात ऐसी हैं जो शहर मदीना मुनव्वरा में नाजिल नहीं हुई मगर वो मदनी है। चुनाचे हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत से सफर पेश आए जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा से सैकड़ों मील दूर भी तशरीफ ले गए। उन तमाम मुकामात पर नाजिल होने वाली आयतें मदनी ही कहलाती हैं, यहाँ तक कि उन आयतों को भी मदनी कहा जाता है जो फतह मक्का या गजवाए हुदैबिया के मौके पर खास शहर मक्का या उसके मुजाफात में नाजिल हुई, मक्का मुकरमा के आउटस्कर्ट, ये या क्या कहते हैं, आउटस्कर्ट सबर्ब्स वगैरह है, बाहर के जो इलाके होते हैं शहर के, तो उनमें नाजिल हुए। चुनाचे आयत कुरानी इन अल्लाह यामरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा ये मदनी है, हालांकि वो मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। ठीक है, उम्मीद है कि अब तक तो अक्सर लोगों को ये बात पता चल ही चुकी थी। फिर बात सूरतें तो ऐसी हैं कि वो पूरी की पूरी मक्की या पूरी की पूरी मदनी है, मसलन सूरह मुद्दसिर पूरी मक्की सूरत है और सूरह आले इमरान पूरी की पूरी मदनी सूरत है। आले इमरान कितनी बड़ी, यानी दूसरी बड़ी सूरत है ना पूरे कुरान मजीद की, लेकिन पूरी की पूरी मदीना मुनव्वरा में। लेकिन बाज मरतबा ऐसा भी हुआ है कि पूरी सूरत मक्की है लेकिन इसमें एक या चंद आयात मदनी भी आ गई है। ठीक है, यानी हिजरत से पहले नाजिल हो चुकी थी लेकिन अल्लाह ताला ने दो तीन आयतें जो है वो रोक के रखी हुई थी, मदीना तैयबा की हिजरत के बाद वो आयत नाजिल हुई, तो इस तरह से वो आयत जो है मदनी बन गई। और बाज मरतबा इसके बरअक्स भी हुआ है, मसलन सूरह आराफ मक्की है लेकिन उसमें वसअलहुम अनिल करियत अल्लती कानत हाफिज़तल बहर से लेकर व इज़ा अख़ज़ा रब्बुका मिन बनी आदम तक की आयात मदनी है। ठीक है, तो ये दो आयात जो, यानी दो चंद आयात जो है ना वो अल्लाह ताला ने रोकी हुई थी मदीना तैयबा के अंदर नाजिल करें। इसी तरह सूरह हज मदनी है लेकिन इसमें चार आयतें, यानी वमा अरसलना मिन कब्लिका मिन रसूलिन वला नबीयन इल्ला इज़ा तमन्ना से लेकर अदाबु यौमिन अकीम तक मक्की है। इससे ये भी वाजह हो जाता है कि किसी सूरत का मक्की या मदनी होना अमूमन उसकी अक्सर आयतों के एतबार से होता है, जैसे कह देते हैं ना लिल अक्सर हुक्मुल कुल। ठीक है, तो अक्सर आयतें मेजोरिटी आयात जो हैं वो अगर मक्की थी तो फिर वो मक्की कहलाती है, और मेजोरिटी अगर मदनी थी तो फिर वो मदनी कहलाती है। और अक्सर ऐसा होता था कि जिस सूरत की इब्तदाई आयात हिजरत से पहले नाजिल हो गई उसे मक्की करार दे दिया गया, अगरचे बाद में उसकी बाज आयतें हिजरत के बाद नाजिल हुई हैं। ठीक है, तो यही तक आज पढ़ेंगे, बाकी जो कुछ मैसेजेस आए हुए हैं वो अब मैं एक साथ ही देख लेता हूँ कि सो इनडायरेक्टली। अच्छा, फिर वही आपने वही वाला सवाल किया ना, आपने दोबारा किया या पहले किसी और ने किया? इनडायरेक्टली हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन हैड इन निस्बत इत्तेहादी विद हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम। नहीं, ऐसा नहीं है, ये पहले भी आप ही की तरह के एक और नौजवान ने सवाल किया था और उस वक्त भी हमने यही जवाब दिया था कि नहीं, ये मैथमेटिकल नहीं है कि एक्स इज इक्वल टू वाई एंड वाई इज इक्वल टू जी, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू जी, ऐसा नहीं मानना है। ठीक है, तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा कि उनको जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ नस्बत इत्तेहादी हासिल थी, वो उम्मती थे और उनको नबी अलैहिस्सलाम के साथ ही नस्बत इत्तेहादी हासिल थी। और वैसे अगर देखा जाए तो नबी अलैहिस्सलाम के साथ नस्बत इत्तेहादी होना ये जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ नस्बत इत्तेहादी होने से अफजल है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का मकाम मर्तबा जिब्रील अलैहिस्सलाम से अफजल है। राइट, तो कौन सी बात ज्यादा अफजल हुई? अच्छा, बाकी आपने क्या लिखा? निस्बत इनेकासी, निस्बत इलकाई, निस्बत इस्लाही और निस्बत इत्तेहादी। बिल्कुल यही तरतीब है, लेकिन आपके पास जो है ना वो हजरत की किताब रहे सलामत तुम्हारी निस्बत होनी लाजिमी है। तो ये किताब जो है ना वो अपने मुताले में सारे सालिकीन को और सालिकात को रखनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो उसके अंदर ये चारों किस्में जो है वो हजरत ने लिखी हैं और छह साफ सुथरे जुबान में समझाई है। सूरह आले इमरान थर्ड है जी, थर्ड इन द रो है, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट सूरत है ना ये, मैंने सेकंड लार्जेस्ट सूरत कहा। बकरा सबसे बड़ी है, फिर उसके बाद सूरह इमरान है, और सूरह निसा फिर तीसरे नंबर पर साइज के एतबार से बात हो रही है। ठीक है, अच्छा आप क्या फरमा रहे हैं कि सूरह निसा जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है और सूरह आले इमरान जो है वो थर्ड लार्जेस्ट है? अच्छा भाई, मुझे तो नहीं पता था ये वाली बात। क्या वाकई ऐसा है? हमने तो आज तक यही समझा था कि सूरह आले इमरान जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है। अच्छा चलिए, ठीक है आप कहते हैं तो ठीक हो तो होगा। अच्छा, सो व्हाट विल बी से टू देम हु आर कंबाइंड, हु आर कंबाइंड। कंबाइंड का उन्होंने बता दिया ना कि लिल अक्सर हुक्म कुल, अक्सर आयात जो है वो जिस यानी अगर हिजरत से पहले की हैं तो वो मक्की हैं, और अक्सर अगर हिजरत के बाद की हैं तो वो मदनी हैं। और दूसरा एक क्राइटेरिया भी बयान किया है कि जिसके अंदर इब्तदाई आयात जो है वो मक्का मुकरमा में नाजिल हो गई थी ना, तो उनको मक्की ही कह दिया, और बाकी की आयात जो यानी जो जो बाद की आयात है वो अगर मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई तो फिर उनको यानी मक्की ही कहा, क्योंकि इब्तदाई आयात जो है मक्का मुकरमा में नाजिल हो चुकी है। परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम के साथ जब सिद्दीक अकबर रहता है उनको निस्बत इत्तेहादी नसीब हो गई, तो अब क्या जिब्रील अलैहिस्सलाम की मतलब जरूरत नहीं ना, मतलब बल्कि हजरत से तो हमने यहाँ तक सुना कि एक दफा नबी अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि सॉरी ने हजरत सिद्दीक अकबर रहता से पूछा कि आपको मुझसे ज्यादा मोहब्बत है कि आपको अल्लाह ताला से ज्यादा मोहब्बत है? सिद्दीक अकबर रहता का जवाब जो था ना वो अक्सर लोगों पे तो फलक से नहीं उतरेगा। उनका जवाब ये था कि मुझे आपसे ज्यादा मोहब्बत है, और फिर उन्होंने इसको एक्सप्लेन भी किया कि क्योंकि अल्लाह तक पहुंचने का वसीला हमारे लिए आप ही हैं। ठीक है, आप ही से हमने सीखा अल्लाह के बारे में, अल्लाह को कैसे राजी करते हैं, अल्लाह ताला का कुर्ब कैसे हासिल करते हैं। ठीक है, तो हमें तो आपसे ज्यादा मोहब्बत। ठीक है, इज द सेकंड लार्जेस्ट सूरह, सूरह आराफ। अच्छा, एक और आप आ गए माशाल्लाह, पहली कंफ्यूजन हुई हुई थी आपने, एक और कंफ्यूजन पैदा कर दी कि सूरह आराफ जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है। नहीं भाई, चेक कर लें आप लोग, सूरह बकरा लार्जेस्ट है, सूरह आले इमरान अब तक तो हम उसी को सेकंड लार्जेस्ट समझते आए थे, आज जो है वो माशाल्लाह इन्होंने कह दिया कि सूरह निसा जो है वो नंबर ऑफ आयात भी लिख दी माशाल्लाह इधर इन्होंने कि आले इमरान की जो है वो 200 आयात हैं और निसा की जो है 176 आयात हैं। ठीक है, अब आपने और कंफ्यूजन फैला दी कि सूरह आराफ सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है, तो चले माशाल्लाह बहुत सारी चीजें यहाँ पे चले, ये हो गया ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। चले माशाल्लाह, अच्छा आप लोग मैथ्स वगैरह पढ़ रहे हैं। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह, टाइम खत्म हो गया, एक्स्ट्रा हो गया बल्कि 5 मिनट पर। ठीक है, नहीं वो एक्सेप्शन थी, नहीं करा ये बस सब तक क्या रखे उसको, क्या लिखा उन्होंने माशाल्लाह बहुत फायदा हुआ। अच्छा, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले हमसे भी, आपसे भी, और उसको हम सब के लिए फायदे के सबब बना दें। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।